भागवत सार की श्रृंखला में चौथे स्कंद के 25वें अध्याय पर चर्चा है, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। इस अध्याय से लेकर आगे चार अध्याय अर्थात पांच, तो पूरे पांच अध्यायों में पुरंजन का व्याख्यान है, तो इसका प्रारंभ हो रहा है। इसके एक श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः न परं विन्दते मूढो भ्रामयन् संसारवर्त्मसु। गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः न परं विन्दते मूढो भ्राम्यं संसारवर्त्मसु। गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः न परं विन्दते मूढो भ्राम्यं संसारवर्त्मसु। जीवन में कूट धर्मेशु छद्म धर्म में पुत्र पुत्र दार स्त्री धन संपत्ति अर्थ जीवन लक्ष्य अथवा पुरुषार्थ धी मानने वाला न नहीं परम परम विन्दते प्राप्त करता है मूढ़ दुष्ट भ्राम्यन घूमता हुआ संसार संसार के वर्तमसु रास्तों पर। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तात्पर्य, जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री बच्चों संपत्ति तथा घर गृहस्थी से बंधे रहना, वे कूट धर्म में लगे रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने इस कूट धर्म को अंधकूप कहा है। उन्होंने जानबूझकर इसे अंधकूप कहा है, क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है तो वह मर जाता है। भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु कोई सुनेगा नहीं या कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। भ्रामयन संसार वर्तमशु पद महत्वपूर्ण शब्द है। श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करती हैं, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनके जीवन सार्थक हो जाते हैं। यद्यपि राजा प्राचीन वैरिषत सकाम कर्म में लगे हुए थे, किंतु नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा अत्यंत भाग्यवान था कि उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। समस्त संतों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्मबंध फांस से छुड़ाएं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्री कृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तु ते मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तु ते असाधु साधु तदाइन अति नीचोच तह कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारत्कंठयोस्पुरा हरे कृष्ण। तो ये अध्याय 25वां अध्याय है, पुरंजन का उपाख्यान प्रारंभ होने वाला है। इसमें इस अध्याय से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें मिल सकती हैं। नारद मुनि इस अध्याय में अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति को प्रकट करवा रहे हैं, सीधे नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति को बतला रहे हैं। दूसरी चीज इस अध्याय में बड़ी महत्वपूर्ण है, एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन जो बहुत आसक्त है अपनी पत्नी से। तो गृहस्थ जीवन में पत्नी से आसक्ति के क्या खतरे हैं, वो इसमें अध्याय में वर्णन किया गया है। जब हम पत्नी को पति से और पति को पत्नी से। और तीसरी चीज इस अध्याय में वर्णन है भौतिक बुद्धि की और कैसे उसे आध्यात्मिक बुद्धि की ओर मोड़ा जा सकता है। तो ये इस प्रमुखता इस अध्याय में चर्चा है। प्रयास करेंगे आज जितना हो सका, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, और अगर नहीं संभव हुआ तो अगले दिन कल उसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्रचेताओं ने शिवजी के स्तोत्र को सुन लिया, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। शिवजी ने श्रुति फल भी दिया कि आप इसको ही गाओ, इससे ही भगवान की प्राप्ति होगी, जीवन सफल होगा, मैं विशेषतः इसके लिए ही आया हूं आपके पास। तो फिर प्रचेताओं ने उसको स्वीकार किया और जल के भीतर 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने तपस्या की। शिवजी के द्वारा गाया गया इस गीत को उन्होंने दोहराया। तो प्रचेता हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि तपस्या क्या है। तपस्या भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। तपस्या आचार्यों के आदेश पर की जाती है। तपस्या आचार्यों के वाणी को दोहरा कर की जाती है और तपस्या एक साथ मिलकर भगवान की प्राप्ति में उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए की जाती है। ये तपस्या है। अगर तपस्या का उद्देश्य ये नहीं है तो फिर उसे तपस्या नहीं कहना चाहिए, वो तो फिर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया एक परिश्रम है। श्रम एव हि केवलम, तो वो केवल श्रम है अगर ये चीजें तपस्या में नहीं है। तो इसीलिए प्रचेताओं ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, तपस्या वो कर रहे हैं शिवजी के कहने पर। शिवजी ने कहा इस स्तोत्र को दोहराओ, उन्होंने दोहराया। शिवजी कौन हैं? वैष्णव हैं। तो इसीलिए तपस्या होती है आचार्यों के मार्ग को, बताए हुए मार्ग पर चलने से, ये सही तपस्या है। कभी कभी कुछ लोग बाहरी जगत में कहते हैं कि ये जो भक्ति है ये कमजोर लोगों के लिए है, ये स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए ठीक है, या उन लोगों के लिए जिनमें शक्ति नहीं है, तो उन लोगों को भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जिनके अंदर बुद्धि है, जिनके अंदर शक्ति है, उन्हें तपस्या करनी चाहिए। तो प्रचेता यहां दिखा रहे हैं कि तपस्या करनी है तो भगवान के भक्तों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति कोई कमजोर लोगों के लिए है। भक्ति में भी बहुत बड़ी तपस्याएं हैं, और सबसे बड़ी तपस्या एक अहंकारी जीव के लिए किसी दूसरे के आदेश को स्वीकार करना, और भक्ति मार्ग में ये पहली चीज है, गुरु का आश्रय। तो गुरु का आश्रय लेना अर्थात एक अहंकारी जीव दूसरे के आदेशों को, उपदेशों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसीलिए तपस्या ऐसे होनी चाहिए। तो प्रचेताओं ने तपस्या प्रारंभ की। अब नारद मुनि ने सोचा कि जो इनके पिता हैं प्राचीन बर्हिषत, शिवजी ने ज्ञान दे दिया प्रचेताओं को, और नारद मुनि ने सोचा कि इनके पिता का क्या होगा, शिवजी तो जा नहीं रहे हैं उनके पिता के पास। तो उन्होंने कहा मुझे जाना चाहिए। क्या कारण था नारद मुनि ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि नारद मुनि ने सोचा कि मेरा शिष्य था ध्रुव, ध्रुव को ज्ञान दिया था नारद मुनि ने, और ध्रुव क्या चाहते थे, वो भी कोई भौतिक लाभ चाहते थे, बड़ा राज्य पाने की कामना से भगवान की भक्ति कर रहे थे। और अब ध्रुव महाराज के ही वंशज प्राचीन वैभिषत वो भी वही कार्य कर रहा कि कोई भौतिक लाभ पाने के लिए वो यज्ञ इत्यादि कर रहा है। तो नारद मुनि ने कहा इसको भी जाकर समझाना पड़ेगा, जैसे ध्रुव को समझाया था ऐसे इसको भी ज्ञान देना। तो इसीलिए नारद मुनि राजा प्राचीन वरिष्ठ के पास गए, जो प्रचेताओं के पिता हैं, और बहुत सारे यज्ञों में लगे थे, वो बहुत यज्ञ कर रहे थे, कर्मकांडी यज्ञ। वेदों में, वेदों को अगर विभाजित किया जाए तो वेदों का बहुत बड़ा हिस्सा कर्मकांड है, और फिर उसके बाद ज्ञान कांड और उपासना कांड है। उपासना कांड बहुत छोटा सा है, सारा 80% वेद में कर्मकांड भरा हुआ। तो इसलिए नारद मुनि ने देखा कि अब जाकर समझाना चाहिए। तो नारद मुनि पहुंचे राजा प्राचीन बर्हिषत के पास, और वो बहुत यज्ञ इत्यादि कर रहे थे। तो उस समय नारद मुनि ने उनसे पूछा, उनको कहा कि ये किस लिए आप यज्ञ कर रहे हो? सुख पाने के लिए? लेकिन इन कर्मों से, इन चीजों से सुख नहीं मिलता, केवल दुख मिलता है। जिस आनंद की खोज कर रहे हो वो मिलता नहीं है, हालांकि दुख मिल जाता। तो नारद मुनि ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राजा प्राचीन बर्हिषत तो धर्म का पालन शास्त्रों के आधार पर कर रहे थे। जिन यज्ञों को वो कर रहे थे, जिन क्रियाओं को वो कर रहे थे, वो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। तो फिर शास्त्रों का पालन करने के लिए क्यों मना किया नारद मुनि ने? क्या नारद मुनि भगवान बुद्ध की तरह प्राचीन बर्हिषत को ये कह रहे हैं कि वेदों को त्याग दो? नहीं। तो फिर धर्म को त्यागने के लिए क्यों कहा? बड़ा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए समझना। दो प्रकार के धर्म होते हैं, अधर्म और धर्म में भेद तो हम सब कर सकते हैं कि अधर्म है और धर्म है, लेकिन धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपराधर्म और एक पराधर्म, परोधर्म। जैसे भागवत में कहा गया है ना, सवै पुंसा परोधर्म। तो ये पराधर्म और अपराधर्म, ये दो प्रकार के धर्म होते हैं। अपराधर्म क्या है? अपराधर्म वो धर्म है या वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित क्रियाएं हैं जिनसे व्यक्ति इस जगत में सुख पा सकता है। अपराधर्म ये हमें इस जगत में सुखी बनाने के लिए है, या कहना चाहिए छद्म छलावा धर्म है, धर्म है लेकिन छलने के लिए। जैसे कभी कोई व्यक्ति का चेहरा सुंदर नहीं होता तो वो अपने चेहरे पर कुछ लगा लेता है, कोई ऐसे सौंदर्य प्रसाधन मिलते हैं तो उनको लगा लेता है जिससे वो सुंदर हो जाता है, तो उनको सौंदर्य प्रसाद हम कहते हैं। ऐसे ही वो धर्म अपराधर्म ये समाज का सौंदर्य प्रसाधन है। अर्थात व्यक्ति जैसे बहुत बुरा दिखता है तो कुछ सौंदर्य प्रसाधन लगाकर उसको लगता है कि वो सुंदर दिखने लगा है, लेकिन सुंदर होता नहीं है। दरअसल अगर बारिश आ जाए तो सारा मेकअप निकल जाता है ना, तो फिर क्या लाभ है ऐसे लगा के जाने। इसी तरह जो व्यक्ति अपने आप को समाज में बड़ा अच्छा दिखाना चाहता है वो ऐसे अपराधर्म का पालन करता है, ताकि वो ये एक मेकअप की तरह एक प्रसाधन लगा लिया कि हाँ मैं धर्म पालन कर रहा हूं, मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, इसीलिए उन धर्मों को। लेकिन इच्छा क्या है? भोग करना, आनंद लेना। तो ऐसे धर्म का ये जो प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन लगाकर घूमते हैं, कब तक? जब तक नारद मुनि जैसे लोगों की अमृत वाणी की वर्षा नहीं होती। बस जिस दिन वो वर्षा हो जाए सारा निकल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेकअप वेकअप करके जाए और तेज बारिश आ जाए, छाता भी ना हो उसके पास, तो क्या बचेगा? जब तक जहां जा रहा है पहुंचेगा, वहां पहुंच के सब लोग को पता चल जाएगा कि क्या। लोग बहुत आसक्त हैं अपने चेहरे को सुंदर बताने के लिए। एक बड़े प्रसिद्ध गायक थे, दुनिया में प्रसिद्ध थे वो गायक, और उनके बारे में कहा गया है कि उनकी पत्नी ने भी कभी उनको बिना मेकअप के नहीं देखा। उनका चेहरा सुंदर नहीं था, तो उनकी पत्नी ने भी, ये उनके मरने के बाद जब उनकी पत्नी का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि वो जैसे ही सो के उठते थे सीधा बाथरूम में भागते थे, और जब तक मेकअप नहीं कर लेते थे बाहर नहीं आते थे। तो उनकी पत्नी तक ने उन्हें कभी बिना मेकअप के नहीं देखा। तो बड़ा लोगों को शौक है कि हम सुंदर दिखें, इसी तरह लोगों को शौक है कि हम धार्मिक दिखें समाज में। लोग कहें कि अरे देखो कितना बड़ा व्यक्ति है और रोज मंदिर जाता, बहुत बढ़िया। तो ये एक प्रसाधन हमने लगा लिया अपने चेहरे के ऊपर। तो वही नारद मुनि समझा रहे, कोई लाभ नहीं है इससे, क्योंकि हम तब ऐसी, तो ये अपराधर्म है जहां हम केवल कुछ भौतिक लाभ के लिए, भौतिक चीज के लिए या दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ये पराधर्म नहीं है, अपराधर्म है, क्योंकि हम लोग ऐसे इसको, भक्ति को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, जैसे जीवन में बाकी चीजें हैं, हमें परिवार चलाना है, ये जीवन का हिस्सा है, मित्रों आदि से मिलना है, ये जीवन का हिस्सा है, हमें व्यापार करना है, जीवन का हिस्सा है, पिक्चर देखने जाना है, क्रिकेट देखने जाना है, ये जीवन का हिस्सा है, एंटरटेनमेंट। और इसी तरह मंदिर जाना एक एंटरटेनमेंट है। हरे कृष्ण वाले बड़े कूदते रहते हैं, उनको देखकर आनंद आता है, तो मंदिर जाना भी उनका एक जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए कि भक्ति हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, हमारा जीवन भक्ति का हिस्सा है। आप सबको समझ में आया? जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति जीवन का हिस्सा है, मतलब ये पूरा बहुत बड़ा जीवन है, उसमें एक छोटा हिस्सा भक्ति भी है। रोज जाकर मंदिर में घंटी बजा कर आए, इसीलिए लोगों को घंटी बजाने का बड़ा शौक है, सोचते कि आने से पता चल गया भगवान को कि हम आए हैं। अगर इसीलिए पूछते हैं इस्कॉन मंदिर में घंटी किधर है, क्यों? बजा के बताना चाहते हैं, भगवान देखो आ गए, बैंक में बैलेंस बढ़वा देना। बड़ा शौक है लोगों को घंटी बजाने का। तो वो क्या सोचते, सुबह मंदिर चले गए, बस घंटी बजाई, जेब से कुछ 2 रुपया जो भी वो नोट, वैसे भी बाहर नहीं चलने वाला था तो वो दान पेटी में डाल दिया, और धार्मिक हैं हम लोग। तो इसलिए भक्ति को जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन भक्ति जीवन का हिस्सा नहीं, ये जीवन भक्ति का हिस्सा है। अर्थात हमारी भक्ति कई जन्मों में फैली हुई है, भक्ति एक जन्म की नहीं होती है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो कई जन्मों में भक्ति फैली हुई है, इसका छोटा सा हिस्सा ये हमारा जीवन है, ऐसे भक्त मानते हैं। ये पराधर्म है। तो पराधर्म क्या है? जो धर्म इस भौतिक जगत के परे ले जाने की आपको प्रेरणा दे वो पराधर्म है, क्योंकि इस जगत के परे परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तात् व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि इस जगत के परे एक सनातन जगत है, तो इसीलिए उसको पाने के लिए पराधर्म उसकी आवश्यकता है। इसीलिए इस धर्म को नारद मुनि छद्म धर्म कहते हैं कि ये तो जो केवल कर्मकांड ही है, कर्मकांड करते रहते हैं, तो ये केवल पराधर्म नहीं है, अपराधर्म है। क्यों? भौतिक इच्छाएं बढ़ा देता है ये। तो सारा जीवन व्यक्ति धर्म का पालन करता है किस लिए? कुछ पाने के लिए, इस जगत में कुछ पाने के लिए। तो इसीलिए वे लोग करते, और अंत में क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं। बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं कर्मकांडी, जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन गए उसके बाद क्या? बड़े बड़े नेता हो गए, उनका एक पुतला बना दिया जाता है, जाने के बाद उसके ऊपर कौवा और कबूतर अपना कार्य करते रहते हैं, साल में एक बार साफ वाफ करके हार पहना देते हैं, बस क्या लाभ ऐसे जीवन का? बहुत धन कमाया, बहुत परिवार चलाया, जैसे आज के श्लोक में कहा जा रहा गृहेश उदारेशु, तो बस वही जीवन में किया, मिला क्या अंत में? एक पुतला बना देंगे लोग और उस पर कबूतर बैठेंगे, कौवे बैठेंगे। तो क्या नारद मुनि उन्हें ये समझा रहे हैं कि जो ये मार्ग तुम ले रहे हो, ये कर्मकांडी मार्ग, केवल कष्ट होगा जीवन में अंत में। तो प्रश्न ये आता है, क्या भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं होता? भक्त भी भक्ति करते हैं, उनके जीवन से सब कष्ट चले जाते हैं क्या? वो बड़े आराम से रहते हैं? नहीं, उनके जीवन में भी कष्ट है। तो उनके जीवन में जब कष्ट है और फिर कर्मकांडियों के लिए भी कष्ट है, तो फिर लाभ क्या है? लाभ ये है कि भक्तों के जीवन में जो भक्त कष्ट ले रहे हैं, उन्हें एक आशा है कि अंत में भगवान मिलेंगे। कर्मकांडियों की क्या आशा? ये स्वर्ग मिलेगा, थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, जीवन थोड़ा बढ़ जाएगा, और क्या आशा? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, आप ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अगर आप ब्रह्म लोक में भी चले जाओगे तो आना पड़ेगा। तो उनकी आशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है? कुछ थोड़ा लोक मिल जाए। भक्तों की आशा क्या है? कृष्ण मिल जाए। तो इसीलिए भक्त भी कष्ट सहते हैं और कर्मकांडी भी, लेकिन अंतर दोनों में उद्देश्य का है। तो इस तरह से नारद मुनि अब प्रचार करने वाले हैं। तो नारद मुनि ने राजा से कहा कि ये क्या आप ऐसे कर रहे हो? और फिर उन्होंने दिखाया कि देखो राजन, ऊपर देखो, तुमने जितने प्राणियों को मारा है इस यज्ञ में क्रूरता से, वो सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जिस समय तुम मरोगे, वो सब तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले। और देखा राजा प्राचीन भविष्यत ने घबरा गया, ऊपर सारे वो जितने प्राणियों को मारा था सब खड़े हैं, देख रहे हैं, महाप्रसादे गोविंदे, मतलब कब ऊपर आए हैं। तो नारद मुनि ने दिखाया, देखो क्या क्या लाभ हुआ तुम्हारे ये सारे यज्ञों का, लाभ क्या हुआ देखो, यही लाभ हुआ बस। दरअसल नारद मुनि उनको वो प्राणी दिखाते हुए जीवन का उद्देश्य दिखला रहे थे कि तुमने अपने जीवन के उद्देश्य को ये बनाया, क्या? लोगों से घृणा, लोगों से द्वेष, उन तुम्हारे को मारने के लिए सब तैयार खड़े हैं प्राणी, यही तुमने प्राप्त किया, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भक्ति, जिसको आगे बताने वाले नारद मुनि। तो प्रारंभ कर रहे, नारद मुनि बहुत बड़े प्रचारक हैं, और वो जैसे विशेषतः ये जो पुरंजन की कथा है, ये एक दृष्टात्मक कथा के द्वारा प्रचार किया गया है। नारद मुनि ने सीधे नहीं कहा, दृष्टात्मक, दृष्टांता, दृष्टांत दिया कि ये दृष्टांत, ऐसे एक व्यक्ति था, ऐसे उसका घर था इत्यादि। तो ये प्रचारकों के लिए आवश्यक है नए नए तरीकों से प्रचार करना। एक नया तरीका यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं, उसी को उसी की कहानी सुना रहे, लेकिन अंत तक उसको समझ में नहीं आया कि मेरी कहानी सुना रहे, ऐसे नारद मुनि करते हैं। राजा प्राचीन भविष्य की ही कहानी सुना रहे हैं, लेकिन उसको सुनाई उसी की कहानी और उसी को अंत तक पता नहीं चला। बाद में पता चला, ये जो आप बोल रहे हो तो मेरी कहानी लग रही। बोले, पहले से मैं तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं, तुमको तो अभी समझ में आया। तो ये प्रचार का नया तरीका। प्रचार अभी हम लोग क्या प्रचार करते हैं, हमारे लिए प्रचार क्या है? प्रभुपाद की वाणी को दोहराना, सही है। तो कभी कभी कोई कह सकता है कि अरे आप लोग कोई नई चीज नहीं करते हो। व्यक्ति को रचनात्मक क्रियाएं करनी चाहिए ना, क्रिएटिव होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, बस केवल दोहराते हो, जो प्रभुपाद ने कहा वही दोहरा दिया, तो कौन सी बड़ी बात है, क्या प्रचार हो गया? तो नारद मुनि यहां समझा रहे हैं कि प्रचार में सिद्धांत नहीं बदलते। नारद मुनि बताने वाले वही बात है, भगवान की भक्ति करो, कुछ और बोलने वाले नारद मुनि वही बोलने वाले, लेकिन उसको घुमा फिरा के बता रहे हैं, तो नए तरीके। तो इसीलिए प्रचारक को एक बड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, नया नए तरीके ढूंढने चाहिए प्रचार के, जैसे नारद मुनि ढूंढ रहे हैं। तो जब लोग ऐसा कहते हैं कि वही चीजें नहीं है, सिद्धांत तो वही रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बीमारी फैली है, जैसे कभी कभी पहले, अब तो नहीं होता, पहले होता था कि बीमारियां फैल जाती थी, और बीच में भी हुआ था, हमने सुना था स्वाइन फ्लू आ गया था और पता नहीं क्या क्या, आजकल भी अफ्रीका में बहुत फैली हुई है बीमारियां इत्यादि। तो जब बीमारी फैलती है और डॉक्टर के पास जाया जाता है, तो डॉक्टर क्या बीमारी की जब दवाई देता है, समझिए चार लोग आए, उनको तो वही दवाई देगा ना, वही बीमारी है वही दवाई देगा। अब पांचवा आएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, कुछ नई दवाई देनी चाहिए। बोलता है डॉक्टर ऐसा, बीमारी वही है तो दवाई वही देगा, वो कोई दवाई बदलेगा, वो नहीं, वही दवाई, राइट। तो इसी तरह आचार्य है, आपकी बीमारी वही है, कृष्ण से विमुख हो गए हैं, एक ही बीमारी है, तो फिर वो दवाई भी वही देंगे कृष्ण के सम्मुख जाने की। इसीलिए बदलता नहीं है सिद्धांत, लेकिन तरीके बदलते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करते थे तो प्रभुपाद ने भी नए नए तरीके अपनाए। प्रभुपाद ने प्रचार प्रारंभ किया किन लोगों को, हिप्पियों को, सारे हिप्पी नशे में रहते थे। तो एक बार प्रभुपाद एक हिप्पी से बात कर रहे थे, बहुत नशा करता था वो, उस समय LSD लेते थे वो लोग, अभी पता नहीं क्या लेते हैं LSD, वो भी हमें इसलिए पता है क्योंकि बुक में पढ़ा है प्रभुपाद के लीलामृत में। तो आप लोग सोचोगे आपको कैसे पता कि LSD लेते थे उस समय, खैर उस समय तो LSD लेते थे, तो वो ड्रग एडिक्ट था। तो प्रभुपाद से बात कर रहा था, प्रभुपाद से उसने पूछा कि वैकुंठ क्या है। आप सोचिए कोई नशे में हो ड्रग्स के और वो पूछ रहा है कि वैकुंठ क्या है बताइए, तो प्रभुपाद क्या बताएंगे उसको, वैकुंठ भगवान का धाम है, वहां हंस घूमते हैं या एरोप्लेन होते हैं, वहां कोई मृत्यु नहीं, ये सब बताएं, बताना चाहिए ना, वैकुंठ यही है। प्रभुपाद ने क्या कहा, वैकुंठ मतलब LSD का सागर। LSD का सागर है, LSD मतलब ड्रग्स। तो प्रभुपाद क्या कह रहे थे कि तुम यहां पर थोड़ा सा ले रहे हो ना, कितना कष्ट होता है, पैसा वैसा खर्चा करना पड़ता है, वहां पूरा सागर है, आनंद ही आनंद। एक दृष्टि में सही कह रहे थे, आनंद ही आनंद है। तो प्रभुपाद ने उसको कहा LSD का सागर है वहां, हाँ तो फिर तो जाना चाहिए, हाँ फिर ये जपा करो। अच्छा ठीक है, तो जपा करने लग गया। क्योंकि उसको LSD का सागर चाहिए। तो जिन लोगों को भौतिक चीजें चाहिए उनको तो इसी तरह तो किया जाता है ना, इसी तरह उनको लगाया जाता है। नहीं तो अगर प्रभुपाद कहते कि वहां पर ये सब नहीं है, ड्रग्स नहीं है, घर तकलीफ नहीं, तो जाते ही नहीं, बोलते फिर आप जाओ हम यहीं ठीक हैं। प्रभुपाद ने कहा LSD का सागर है वहां पर। एक बार प्रभुपाद ने देखा कि ये जो हिप्पी हैं, ये लोग क्या करते थे, हिप्पी जो होते थे, प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे तो देख रहे थे कि वो लोग सड़कों पर नाचते थे, मतलब नशे में हो जाते थे, ड्रग्स लेते थे और फिर सड़कों पर नाचना शुरू कर देते थे। अब पुलिस वाले आते थे उनको पकड़ कर अंदर कर देते थे, सड़कों पर ऐसे नाचना ये सब करना ठीक नहीं, तो पुलिस वाले उनको अरेस्ट कर लेते थे। तो प्रभुपाद ऐसे देख रहे थे और अचानक दूसरे दिन उन्होंने देखा कि एक ट्रक जा रहा था, प्रभुपाद छत पर बैठे थे, उन्होंने नीचे से देखा ट्रक जा रहा था। ट्रक मतलब वो उसके जो साइड की चीजें होती हैं वो खुली हुई थी, पूरा खुला हुआ ट्रक था वो, तो वो जा रहा था। तो प्रभुपाद ने जैसे ही देखा, प्रभुपाद को एक प्रचार का माध्यम आया, क्या करना है, रथ यात्रा करनी चाहिए। अभी तक रथ यात्रा शुरू नहीं हुई थी, केवल ट्रक को देखकर प्रभुपाद ने कहा रथ यात्रा करनी चाहिए, ये सोच लिया। बताइए कौन सोच सकता है, हम लोग तो कितने ट्रक देखते हैं दिन में, या पहले भी देखे होंगे, कभी आया मन में, प्रभुपाद ने ट्रक देखा, इन लोग को नाचते देखा, चलो रथ यात्रा। तो रथ यात्रा हुई, वही हिप्पी उसमें नाच रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, और जो पुलिस वाले पहले उनको पकड़ कर ले जाते थे, अब उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, पुलिस साथ में चल रही है, हाँ ठीक है, और ये लोग नाच रहे सड़कों पर। तो देखिए प्रभुपाद ने सोचा कि इनको नचाना ही है सड़कों पर, जगन्नाथ रथ यात्रा करनी चाहिए, तो रथ यात्रा हो गई। तो ऐसे नए नए प्रचार के माध्यम प्रभुपाद ने स्थापित किए। तो नारद मुनि भी यहाँ इस कथा में यही दिखला रहे हैं कि किस तरह से एक कथा बताकर उनको प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने दिखलाया प्राणियों को कि देखो कौन सब तैयार खड़े हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि यज्ञ का उद्देश्य होता था, जब प्राणियों को मारा जाता था, कि उनको मनुष्य शरीर मिलना, और अगर कहीं थोड़ी सी गलती रह जाती थी, अगर मनुष्य शरीर नहीं मिलता था, तो फिर उन्हें उसी के हत्या का पाप लगता था। और वो पाप कैसा होता था, जैसे कोई किसी की मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या करता है, उसी समान पाप लगता है, प्रभुपाद कहता है। तो जरा सी गलती हो जाती थी, तो अगर सही हो गया, उसको मनुष्य जीवन मिला, तो यज्ञ का लाभ है। तो नारद मुनि यही समझा रहे हैं कि बड़ा रिस्की काम तुम कर रहे हो, देखो ऑलरेडी पहले से ही तुम्हारी तकलीफ, तुमने यज्ञ किए, सब लोग तैयार खड़े। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए, और पशु का वध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशु वध में जो व्यक्ति पशु वध की अनुमति देता है, जो उसको मारता है, जो उसको खरीदता है, जो उसको बनाता है, जो उसको खाता है, सबको पाप लगता है, कोई छूटता नहीं। तो इसलिए नारद मुनि यहां समझा रहे हैं कि प्रयास करना चाहिए कि ये सारी चीजें हम लोग ना करें और भगवान की भक्ति में लगें। तब ऐसा कहकर उन्होंने जब समझाया, तो राजा बोलने लगे, ये जो श्लोक है ये राजा ने बोला है प्राचीन वरिष्ठ में। तो राजा ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं तो कर्म कांड में लगा हुआ हूं और मुझे कुछ जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, इसलिए आप बताइए। अर्थात कर्मकांडी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं थे उससे। और फिर उन्होंने ये श्लोक कहा कि व्यक्ति फंसा रहता है परिवार में, पुत्रदार ग्रहे दिशु इत्यादि, और उसी में जीवन चला जाता है, उसी को सब कुछ मानता है, जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। तो अब नारद मुनि पुरंजन की कथा प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्व में मैंने इतिहास में एक बहुत राजा हुए, बड़े राजा, उनका इतिहास मैं सुनाता हूं तुम्हें, और उनका नाम था पुरंजन। तो वो कहते हैं कि पुरंजन, पुरंजन शब्द का अर्थ क्या होता है, पुरन अर्थात ये देह में, पूरा देह को कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नवद्वारे पूरे देही, पूरे मतलब ये शरीर, तो पुर मतलब शरीर, और पुरन यानी जो शरीर में, और जन यानी आत्मा। तो पुरंजन अर्थात ये जो पुरंजन की कथा है, किसी और की नहीं, हमारी कथा है, इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पुरंजन अर्थात वो आत्मा जो इस शरीर में इस समय है, उसकी कथा अब नारद मुनि प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस शरीर में आत्मा बहुत पहले समय से है, इसीलिए प्राचीन इतिहास नारद मुनि कहते, प्राचीन मतलब बहुत पहले से। तो इस शरीर में आत्मा बहुत पहले से है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तोरी बारे ना देखी उपाय। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि अनादि कर्म फले, ये कर्मों के फलों के कारण कब के हैं, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, पता नहीं कब से चल रहा है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, भव अर्थात ये भौतिक जगत, आर्णव यानी समुद्र और उसके जल में। तो कह रहे कि पता नहीं कब से अनादि काल से इस भव सागर में हम लोग पड़े हुए हैं। तोरी बारे ना देखी उपाय, और इसको तारने उसके पार करने का कोई उपाय नहीं। तोरी बारे ना देखी उपाय, तो इसको पुरंजन कहते हैं कि वो पुरंजन जो इस देह में है और वो राजा है। दो चीजें शुरुआत में वो बताते हैं कि एक तो वो राजा है और दूसरा उसका एक मित्र है अविज्ञाता। अविज्ञाता यानी जो उसको कोई जानता नहीं। तो इन दो चीजों को वो कहते हैं। तो हर एक शरीर में एक पुरंजन है, एक हम हैं, जीव हैं, और हम अपने शरीर के राजा हैं। सही है ना? हर एक व्यक्ति अपने शरीर का राजा है। क्यों? क्योंकि उसको ये छूट है कि वो अपने शरीर का जैसे चाहे इस्तेमाल करें। और हम लोग करते भी हैं ना। हमें कोई अगर कोई कहे ये करो, हम कहे नहीं करेंगे। कोई कहे कि सुबह उठकर भगवान की भक्ति करो, बोले नहीं मैं सोऊंगा। तो हर व्यक्ति अपने शरीर का राजा है। केवल भक्ति में आने के बाद हम लोग उस राज्य को त्यागने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम अधीन रहने का प्रयास करते हैं, नियमों का पालन का प्रयास करते हैं। ये नियमों का पालन हमें ये जतलाने के लिए है कि हम राजा नहीं हैं इस शरीर के, जो हम समझे बैठे हैं कई जन्मों से। तो इसलिए हम सोचते हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं राजा हूं इस शरीर का। तो वो इसे ये बताने के लिए भक्ति में जब आते हैं तो उनको नियम बताए जाते हैं, अधीन रहना होता है। जैसे आप सब भी राजा थे, खास करके ब्रह्मचारी जो हैं, भक्ति में आने के पहले राजा थे, आने के बाद राज्य छिन गया। सुबह सोने की इच्छा है, उठना पड़ता है, राइट? जैसा चाहिए अपने शरीर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उसको सुलाना है तो सुलाया नहीं, उठाया जाता है, चलो उठो। भागवत में बैठना पड़ता है, आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन जबरदस्ती खोलना पड़ती हैं आंखें, बैठना पड़ता है, तभी राज्य से बाहर फेंका जा रहा है आप सबको। तो पुरंजन अर्थात वो व्यक्ति जो इस शरीर में, इस राज्य में है, और अविज्ञाता अर्थात परमात्मा। तो उसको बताया गया है कि वो उनका सखा है। जो अविज्ञाता है वो पुरंजन का सखा है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सखा हैं, हमारे साथ में रहते हैं। और फिर आगे नारद मुनि कहते हैं कि ये जो पुरंजन है ये बहुत जगह घूमा, लेकिन कोई भी जगह पसंद नहीं आई इसको, बहुत जगह घूमा। इसी तरह जीव, ये जो पुरंजन, ये जो जीव है, ये कई योनियों में घूमते हैं, 84 लाख योनियों में, लेकिन कहीं भी आनंद नहीं आता। उनको लगता है कि थोड़ा बहुत आनंद है, लेकिन अंततः वो आनंद नहीं होता। और अलग अलग योनियों में घूमना यही सबसे बड़ा कष्ट है। कई योनियों में हम लोग घूमते हैं, क्या क्या खाना पड़ता है अलग अलग योनियों में, है ना? प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जब हम सुअर की योनि में होते हैं तो मल खाते हैं, कौवे की योनि में होते हैं तो सारा फेंका हुआ चीज खाते हैं, पस इत्यादि शरीर से निकली हुई वो खाता है कौवा, और उसी में आनंद लेते हैं, है ना? कितना गंदा लगता है ना, देखकर ही गंदा लगता है। लेकिन जब ऐसे देखें तो सोचना चाहिए कि एक दिन मैं भी यही कर रहा था, भगवान की कृपा से बच गया हूं। अभी हम लोग भी वही सब वही करके आए हैं। तो 84 लाख योनियों में घूमता है जी, लेकिन कहीं आनंद नहीं आता, क्योंकि आत्मा इस भौतिक जगत में सुखी हो ही नहीं सकती। आत्मा का आनंद यहां नहीं है। इसलिए आत्मा का आनंद को ढूंढते हुए हम 84 लाख योनियों में जीव केवल आनंद ढूंढता है, और कुछ नहीं ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। और वो आनंद मिलता नहीं है उसे। क्यों नहीं मिलता जीव को आनंद? क्योंकि वो आनंद शरीर से लेने का प्रयास करता है, और शरीर का आनंद भौतिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद आत्मा का आनंद है, और इसीलिए शरीर से उसको आनंद नहीं मिलता। तो बहुत जगहों में वो घूमता रहता है, प्रयास करता है, जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानाम यंत्ररूढान् मायया। भगवान कहते हैं कि जो जीव है ये यंत्र पे बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन, घुमा रहे हैं वो बिठा के, और क्या है सर्वभूतानाम यंत्ररूढानि मायया, जैसे एक यंत्र पे बिठा के घुमा दिया जाता है तो ऐसे घुमा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों को खिलौने दिए जा रहे, कार लाई जाती है बच्चों के लिए, रिमोट कंट्रोल से चलती, बच्चा बैठ जाता है उसके हाथ में ऐसे को स्टेयरिंग होता है और पीछे से रिमोट से चलाया जाता है, बैटरी से उसे ऑन किया जाता है तो गाड़ी चलने लगती है, और छोटा सा बच्चा होता अब वो बड़ा आनंद लेता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी वो नहीं चला रहा है, अगर वो चला रहा होता तो निश्चित एक्सीडेंट हो जाता। वो पीछे से वो लोग रिमोट से चलाते तो गाड़ी इधर जाती उधर, बच्चा बैठा उसको बड़ा आनंद आ रहा है। यह बच्चा ही क्यों, आप सब भी कभी किसी मेले में गए होंगे, मेले में या ऐसी कोई जगहें आनंद की जगहें होती हैं जहां कार ड्राइविंग होती है, मतलब वो कार वो इलेक्ट्रिक से जुड़ी होती है और उसमें बैठ जाते हैं और फिर बटन दबाया जाता है, वहां से कोई ऑन करता है, कारें चालू हो जाती हैं और व्यक्ति चलाता है, झूम झूम इधर घुमाता है उधर घुमाता है, टक्कर होती है फिर घुमाता है। देखे है कभी आपने, गए कि नहीं, कि सारे शुद्ध सत्व के लोग हैं यहाँ पर, देखा है ना गाड़ियां, मजा आता था ना जाके उसको टक्कर मारना फिर घुमाना फिर मजा। तो क्या लगता था हमें, हमें लगता था हम चला रहे हैं गाड़ियां, और होता क्या था पीछे से बटन रहता था और उसका कनेक्शन होता था, झूम 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 घूमती रहती थी, आप घुमा रहे अचानक टाइम खत्म हो गया, 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए दिया जाता मैं पता नहीं कितना, जितना पैसा दिया उतना हो गया, टाइम खत्म, आप घुमाते रहो कुछ नहीं होना, गाड़ी उधर की उधर, अब कितना ब्रेक दबा लो कितना एक्सीलेटर दबाओ कुछ घुमाओ कुछ नहीं, जब उधर से बंद हो गया बटन मेन बटन वो गाड़ी जहां है वहीं रुक जाती थी, आपको उतरना पड़ता था और फिर आप कहते नहीं थोड़ा और, तो और एक टिकट खरीद के आओ तब और नहीं होगा, राइट, याद है ना आप सबको, किया है ना ये सब। ऐसा ही शरीर है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायाया, ऐसा ही हमारा शरीर है, हम इसे घुमाते रहते हैं ये सोच के कि हम घुमा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है मैं चला रहा हूं, लेकिन जिस दिन बटन बंद हो जाता है गाड़ी रुक जाती है, जरा एक इंच नहीं हिलती और फिर क्या होता है उतरना पड़ता है, राइट, तब आप घुमा नहीं सकते, वही गाड़ी है घुमा लीजिए, नहीं घुमा सकते, क्यों, उतरना पड़ता है और फिर से घुमाना है और एक टिकट खरीदो, फिर हम लोग दूसरा टिकट खरीदते हैं फिर दूसरी गाड़ी घुमाते हैं। तो ऐसे ही ये जीव अलग अलग योनियों में घूमते रहते हैं और अलग अलग योनियों में कष्ट सहते रहते हैं, भगवान को देख नहीं पाते, अविज्ञात मतलब परमात्मा जो साथ में हैं उनको देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी, नारद मुनि कहते हैं कि वो उनका मित्र है लेकिन उसकी क्रियाओं को कोई नहीं जानता, तो भगवान को हम लोग देख नहीं पाते। तो ऐसे प्रारंभ की उन्होंने पुरंजन की कथा कि वो व्यक्ति जिसके साथ भगवान है परमात्मा के रूप में लेकिन कई योनियों में भ्रमण कर रहा है, और उसका कारण कर्मकांड, दरअसल इस अध्याय में प्रमुखतः प्रारंभ के 8 श्लोकों में नारद मुनि ने कर्मकांड का खंडन किया है और उसके बाद फिर पुरंजन की कथा उन्होंने प्रारंभ की, 9वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक वो फिर पुरंजन की कथा को कहते हैं। तो अब ये पुरंजन की कथा वो प्रारंभ कर चुके हैं, तो विशेषतः कर्मकांड का खंडन उन्होंने पहले भाग में किया कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, केवल बंधन का कारण है और बारंबार हमें जन्म चक्र में डालता है, तो ऐसे उन्होंने किया। और अब वो कथा को आगे बढ़ाएंगे तो इसको कल हम लोग सुनेंगे कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये कथा बताई, एक एक चीज को हमें समझना है, जो जो वो बोलते जाएंगे तो कैसे वो हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में लाभदायक है, इसको हम कल वर्णन करें।